दिन भर बुधवार 2 सितंबर मैं हूं रेहान फजल। श्रम कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, क्या कहते हैं आम लोग?
देखिए, जायज नजायज का तो मालूम नहीं है। डेमोक्रेसी, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट बंद करके, रास्ते बंद करके, दिस इज नॉट द राइट वे।
जानेंगे सेवानिवृत्त जवानों की शिकायतें और 1965 युद्ध श्रृंखला में देखेंगे कच्छ भिड़ंत के दौरान एयर मार्शल नूर खां के फोन का हुआ था क्या असर।
जब एक जंग जारी है तो उसका एयर चीफ या कोई भी चीफ उस वक्त के दुश्मन चीफ के साथ करता है तो वो बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है, उसका एक्शन भी सीवियर होता है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत में कई मजदूर संगठनों की बुलाई एक दिन की हड़ताल का देश के कई हिस्सों में असर दिखाई पड़ा है। केरल में आम जनजीवन पर बहुत असर हुआ है, पश्चिम बंगाल में इसका कुछ असर दिखाई पड़ा। दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों के यूनियन ने हड़ताल का समर्थन किया। कई बैंकों की यूनियन भी हड़ताल में शामिल हुई, लेकिन इनमें भारतीय स्टेट बैंक की यूनियन शामिल नहीं है। हड़ताली संगठनों ने 12 मांगों की सूची सरकार को दी है। इन मांगों में न्यूनतम मजदूरी ₹15,000 करना भी शामिल है। दिल्ली में सीबीआई अदालत ने साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े स्ट्रीट लाइट घोटाले में 5 लोगों को सजा सुनाई है। इनमें दिल्ली नगर निगम के 4 अधिकारी भी हैं। इन सभी को 4-4 साल के कैद की सजा मिली है। इसके अलावा एक निजी कंपनी स्वेका पावरटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक टीपी सिंह को भी 6 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा ये पहला मामला है जिसमें अदालत ने सजा सुनाई है। थाईलैंड की पुलिस का कहना है कि उन्होंने पिछले महीने बैंकॉक में हुए बम धमाके की जांच में अहम प्रगति की है। उनका कहना है कि एक संदिग्ध के उंगलियों के निशान मिला लिए गए हैं। ये एक विदेशी नागरिक है जिसे सप्ताहांत में कंबोडिया की सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से बम बनाने का सामान भी मिला है। इस बम धमाके में 20 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रिया में पुलिस ने एक वैन से 24 अफगान प्रवासियों को मुक्त कराया है। वैन में हवा जाने की जगह नहीं थी और इन लोगों की दम घुटने से जान जा सकती थी। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि वैन की खिड़कियों को सील कर दिया गया था और दरवाज़ों को बंद कर उनकी वेल्डिंग कर दी गई थी। पीछे के दरवाजे भी पूरी तरह से लॉक थे। वैन चलाने वाला रोमानियाई ड्राइवर भाग गया था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा में पूरी रात हुई भारी गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। इस साल के शुरुआत में वर्तमान राष्ट्रपति के तीसरी बार चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद से वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। बीती रात की हिंसा इन प्रदर्शनों में सबसे ज़्यादा उग्र रही है। सुरक्षा बलों ने कुछ इलाकों को सील कर दिया। विरोधियों के गढ़ मुसागा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसका जवाब उन्होंने गोलियों से दिया। स्थानीय निवासियों ने विरोध की वजह बताते हुए कहा, हम फिर से प्रदर्शन पर लौटे हैं क्योंकि पुलिस यहां आकर युवाओं को गिरफ्तार कर रही है। हम नहीं जानते कि उन्हें वो कहां ले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बंदूक ढूंढने आए हैं, लेकिन यहां उन्हें कुछ नहीं मिला। यहां सिर्फ डंडे हैं। वो हम पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हम फायरिंग कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि गोली वो चला रहे हैं। वो अब भी गोली चला रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हुसैन अब्दुल्लाह के शब्द। सुरक्षा बलों ने कुछ इलाकों को सील कर दिया है। यमन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेडक्रॉस के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि उनकी हत्या किसने की। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। केंद्र सरकार द्वारा श्रम समुदाय में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और कर्नाटक सहित भारत के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट वारदातें भी हुई। ये संगठन नए प्रस्तावित श्रम कानून का भी विरोध कर रहे हैं। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
एक अंदाजे के मुताबिक आज के बंद में 15 करोड़ मजदूरों ने भाग लिया। बंद का आयोजन करने वाले कुछ यूनियन लीडरों के अनुसार भारत बंद के दौरान बुनियादी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पश्चिम बंगाल में हड़ताल का आंशिक असर देखा गया, जहां लोकल ट्रेन और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों की विभिन्न यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल नवीन कुमार गुप्ता का दावा है कि हड़ताल काफी हद तक कामयाब रही।
सब लोगों ने मिलकर उसमें मतलब पार्टिसिपेट किया। मैं ये नहीं क्लेम करता कि 100% सारे ट्रक्स ऑफ रोड हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है हमारा जो स्कोप है, ये पर्टिकुलर जो आज की हड़ताल है इन दो मुद्दों को लेके नहीं थी, ये थी रोड सेफ्टी बिल को लेके। तो ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की थी और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये मान कर रहे हैं कि जो TDS है, जो ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर अब तक 0% लेवी था, अब उसको 2% लेवी कर दिया है TDS ट्रांसपोर्टर के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। आपको रिटर्न चाहिए, रिटर्न हम फाइल पहले भी करते थे, लेकिन वो 0% तो होती थी।
भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर दूसरे कई बैंकों की यूनियन भी आज हड़ताल में शामिल हुई। हड़ताल करने वाले संगठनों ने सरकार को 12 मांगों की सूची सौंपी है, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी को 15,000 रुपए करने की मांग की गई है। दूसरी मांग में प्रमुख रूप से महंगाई पर रोक, रेलवे और रक्षा में विदेशी पूंजी निवेश यानी FDI पर रोक, लोक उपक्रमों के विनिवेश पर रोक, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, बिना सर्वसम्मति के श्रम कानून में बदलाव पर रोक और भविष्य निधि की सीमा की बढ़ोतरी शामिल है। जिन संगठनों ने आज की हड़ताल में हिस्सा लिया उसमें C2, हिंदू मजदूर सभा और UTUC शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी भारतीय मजदूर संघ ने मांगों का समर्थन जरूर किया है, लेकिन इसका कहना है कि उसने खुद को हड़ताल से अलग कर रखा है। भारतीय मजदूर संघ के अनुसार सरकार को मांगों पर कार्रवाई के लिए समय दिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी हड़ताल का विरोध किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो मजदूर संगठनों से मांगों पर वार्ता जारी रखेगी। हालांकि सरकार ने मजदूर संगठनों से अपील की थी कि वो हड़ताल पर न जाएं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
आइए देखते हैं आम लोगों का इस हड़ताल के बारे में क्या मानना है।
देखिए, जायज नजायज का तो मालूम नहीं है। डेमोक्रेसी, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट बंद करके, रास्ते बंद करके, ट्रांसपोर्टेशन बंद करके, बैंक्स बंद करके, दिस इज नॉट द राइट वे। इकॉनमी का लॉस इज अ कंट्री लॉस, उसको नहीं होना चाहिए।
ये बिल्कुल नजायज है, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्हीं बातों पे चलता रहे, इतनी वायलेंस हो रही है, इतनी बर्बादी हो रही है, पैसे की भी बर्बादी, बैंकों का बंद होना भी बिल्कुल नुकसानदेह है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए।
वो अपने ट्रेड लेवल पे अगर स्ट्राइक करते हैं तो वो तो उनके लेवल पे, अगर उनके मांगे हैं तो सही है। अगर वो बिजनेस लेवल पे बात करता है तो वो जायज नहीं है। सभी का बिजनेस सफर होता है, लोग सफर करते हैं। अगर रोड की बात करें, अगर रोड पे स्ट्राइक करता है, अगर अपने किसी एंड पे स्ट्राइक करता है, सभी जगह वो जायज नहीं है, वो नाजायज है। लोग संतुष्ट हैं भी और नहीं भी, ज्यादातर लोग संतुष्ट नहीं है, जो उनकी डिमांड से वो पूरी नहीं हो पा रही है। जायज नहीं है, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो लोगों का राइट है प्रोटेस्ट करना, वो कर रहे हैं।
मैं मुजफ्फरपुर से आ रहा हूँ, आज स्ट्राइक है, इस वजह से ज्यादा परेशानी है। कहीं ऑटो नहीं चल रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, कम्युनिकेशन है, सब आदमी बहुत परेशान है हड़ताल की वजह से। मालूम था नहीं, निकल गए हैं तो आज बहुत परेशानी के सामना करना है, बहुत देर दूर से पैदल चल रहे हैं।
हम तो औरंगाबाद से आ रहे थे, ट्रेन से उतरे हैं, अभी देखे ना ऑटो हड़ताल है, बहुत परेशानी में हम लोग पड़ गए हैं, परिवार भी साथ, अब कैसे घर जाएंगे। बेली रोड जाना है विजयनगर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है, भयानक जो है तो असुविधा है। पटना शहर में विगत अगस्त 2014 से छोटी गाड़ी जो है ऑटो रिक्शा, इसका परमिट जो है यहाँ की परिवहन विभाग ने रोक दिया है। लगभग 10,000 गाड़ियाँ सड़क से बाहर हो गई है, लगभग इतनी ही गाड़ियां परमिट के अभाव में घरों पर लगा हुआ है। और इसके जगह पर उमर, ओला, कैब, ये नीति सरकार जो है तमाम परिवहन की जो विदेशी कंपनियां हैं उसको हमारे ऊपर थोप रही है और हमारा परमिट रोक रहा है।
आम लोगों की आवाज। सेना के सेवानिवृत्त जवानों का कहना है कि अफसरों के जूते चमकाने की परंपरा अब समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक औपनिवेशिक परिचलन है। वन रैंक वन पेंशन के लिए चल रहे आंदोलन के बीच इन सेवानिवृत्त जवानों ने अपनी मांगों को भी सरकार के सामने जोर शोर से रखा है। पूर्व जवानों का आरोप है कि उनकी तादाद 97% है, और जब बात सुविधाओं की होती है तो अफसरों को ही सारी सुविधाएं मिलती हैं। सलमान रावी की रिपोर्ट।
सेवादारी प्रथा बंद करो, बंद करो, जवानों से कुत्ते घुमाना बंद करो, बंद करो, जवानों से जूते पॉलिश करवाना बंद करो।
अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछली 23 अगस्त से आंदोलन कर रहे इन भूतपूर्व जवानों ने सरकार को जो अपना ज्ञापन सौंपा उसमें आरोप लगाया गया है कि 1,00,000 जवान ऐसे हैं جو فوجی افسروں کی نوکری کرتے ہیں، جیسے ان کے جوتے پالش کرنا، کتوں کو گھمانا، گھروں کی صفائی کرنا، کھانا پکانا اور کپڑے دھونا۔ ان کا آروپ ہے کہ یہ سب کچھ باوجود اس کے ہے جب افسروں کو ان کی تنخواہ میں الگ سے سرونٹ الاؤنس کا پراودھان کیا گیا ہے۔ وائس آف ایکس سروس مین سوسائٹی نام سے پنجکرت پورو جوانوں کے اس سنگٹھن میں مکھیہ روپ سے سینکوں کے علاوہ نان کمیشنڈ افسر یعنی این سی او اور جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی شامل ہیں۔ سوسائٹی کے پروکتا آر کے جھا کہتے ہیں،
ان کا کام آج بھی بدستور جاری ہے، لیکن آرمی آرڈر میں نام میں ایک سنشودھن کر دیا گیا، ان کو سہایک کہا جاتا ہے۔ افسروں کے شریر کی مالش کرنا، ان کے بال بچوں کا مالش کرنا، ان کے کپڑے صاف کرنا، افسروں کے ان کی میڈم کے جوتے چپل پالش کرنا، بیلٹ پالش کرنا، کپڑے پریس کرا کے لانا، اسٹار لگانا، آفیسرس کا ایک اگر مان لیجئے بیلٹ پالش کر دیا یا کپڑا پریس کرا کے لا دیا، اس کے پاس بہت کام ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن گھر کے لیے سبزی بھی لانا ہے، باغبانی بھی کرنی ہے، میڈم کے کپڑے تک دھونا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ برٹش راج کا ڈومین اسٹیٹ کا ابھی تک جو خیال ہے، جو برٹش چلے گئے، لیکن وہی چیز بدستور دارو جاری ہے۔
وہیں سنستھا کے سنیوجک ویر بہادر سنگھ کا کہنا ہے کہ سویدھاؤں میں بڑھوتری تو دور، جوانوں کو ملنے والی پینشن میں بھی کٹوتی کر دی گئی۔
ون رینک ون پینشن وتھ اکول آف ایم ایس پی اینڈ 75% پیج پینشن کے ساتھ، جو کہ 73 سے پہلے ہمیں ملتا تھا، اس کو بیچ میں ریڈیوس کر کے 50% لایا گیا، اور ایک کنڈیشن لگا دی گئی 33 سال سیوا کی، جو کہ ہم پورا نہیں کر پاتے تھے، تو ہمیں ایکچولی گراؤنڈ میں 40% سے نیچے پینشن ملتا تھا، تو ہماری پینشن 35% سے زیادہ کاٹ لی گئی۔
صوبے دار پرگٹ سنگھ نے 1962 میں چین، 1965 میں پاکستان اور 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے ہوئے یدھ میں الگ الگ مورچوں پر دشمنوں کی فوجوں کا جم کر مقابلہ کیا۔ آج وہ اپنا حق مانگتے ہوئے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔
میں جناب 62 کی پہلے لڑائی لڑی، اور بعد میں 65 کی لڑی، اور بعد میں تیسری لڑائی بھی 1971 کی جو ہے وہ لڑائی، کوئی حل نہیں نکل پایا، کیونکہ ہم وشواس رکھتے تھے ان آفیسرز پر، ان آفیسرز نے کوئی بھی ہمارے بارے نہیں سوچا کہ یہ تو ہمارے ساتھ شوشن کر رہے ہیں۔
سیوا نورت جوانوں کا کہنا ہے کہ دیکھا جائے تو جوانوں کو زیادہ سویدھائیں ملنی چاہیے، کیونکہ انہیں 40 سال کی عمر میں ہی ریٹائر کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب پریوار کی ساری ذمہ داریاں پوری بھی نہیں ہو پاتی ہیں۔ وہیں افسر 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں جب ان کی ذمہ داریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ حالانکہ جہاں تک ون رینک ون پینشن کو لے کر چل رہے آندولن کا سوال ہے، تو وت منتری ارون جیٹلی نے سپشٹ کیا ہے کہ پورو سینکوں کی پینشن میں ہر سال بڑھوتری کرنا سمبھو نہیں ہے، مگر وت منتری نے آشواسن بھی دیا ہے کہ زمین پر مورچہ سنبھالنے والے فوجی کے ہتوں کو اندیکھا بھی نہیں کیا جائے گا۔ سلمان راوی، بی بی سی دلی۔
سیوا نورت جوانوں کی شکایتیں۔ اور اب ایک انتراشٹری وشے۔ بینکاک کے اراوان مندر میں 17 اگست کو ہوئے وسفوٹ کے معاملے میں تھائی پولیس نے تھائی لینڈ کمبوڈیا کی سیما پر ایک ودیشی سندگھ کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ شخص اس حادثے کے بارے میں اہم جانکاری دے سکتا ہے۔ اس وسفوٹ میں 20 لوگ مارے گئے تھے۔ اراوان مندر میں ہوا یہ وسفوٹ تھائی لینڈ میں اب تک کا سب سے بھیانک ایسا حملہ تھا۔ بی بی سی سنواداتاؤں سے ملی رپورٹ کا سار سنا رہی ہیں پرگتی سکسینا۔
بینکاک کے اراوان مندر میں ہوئے وسفوٹ کی تفتیش کر رہی تھائی پولیس نے کل ایک ودیشی ناگرک کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص کی انگلیوں کے نشان ان نشانوں سے میل کھاتے ہیں جو بینکاک کے ایک اپارٹمنٹ میں ملی بم بنانے کی سامگری پر پائے گئے تھے۔ اس سے پہلے پولیس نے کہا تھا کہ اس شخص کا حلیہ اس سندگھ سے ملتا جلتا ہے جسے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بم دھماکے سے پہلے مندر میں بیک پیک چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھائی پولیس کے پروکتا لیفٹیننٹ جنرل
آج فورینسک پولیس کے فنگر پرنٹ نتیجے آ گئے ہیں، جن سے یہ پکا ہو جاتا ہے کہ گرفتار کیے گئے شخص کی انگلیوں کے نشان پونان اپارٹمنٹ کے کمرہ نمبر 414 میں پائے گئے وسفوٹک سامان پر بھی ملے ہیں۔ تو اسے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ وسفوٹک سامان बनाने में तो वो शामिल रहा है, हो सकता है वो बम को अपने कमरे से बाहर लाया हो या मौके वारदात तक ले गया हो।
लेफ्टिनेंट जनरल प्रवुत थावन सिरी के शब्द। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार किया गया शख्स इस हमले के पीछे के नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि एमरा दावुतोग्लू नाम का ये संदिग्ध तुर्की का एक नागरिक है और थाईलैंड की संदिग्ध वाना सुआनसन का पति है। पिछले हफ्ते पुलिस ने जिन अपार्टमेंट्स पर छापा मारा था उनमें से एक का लीज वाना सुआनसन के नाम पर है, लेकिन वाना होने का दावा करने वाली एक महिला ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि वह तुर्की में है और पिछले 3 महीनों से थाईलैंड गई ही नहीं है। इस विस्फोट के मामले में अब तक कुल 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर कल गिरफ्तार किए गए इस दूसरे शख्स के पास बैंक बुक भी मिली है जिसमें उसका वही नाम है जो उसके चीनी पासपोर्ट पर है। ये पासपोर्ट थाई मीडिया में काफी दिखाया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक ये शख्स चीन के शिनजियांग प्रांत से है जो उइगर मुस्लिम महुल प्रदेश है, लेकिन BBC संवाददाता जोनाथन हेड का कहना है कि अब तक चीन और थाईलैंड दोनों ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है कि वह पासपोर्ट वाकई इस संदिग्ध का है भी या नहीं। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो ये साफ हो जाएगा कि संदिग्ध उइगर समुदाय से है। करीब 100 उइगरों को जुलाई में थाईलैंड से वापस चीन भेजने का मुद्दा दोनों देशों के लिए बहुत संवेदनशील रहा है। मुमकिन है इस बात के साफ होने से इस विस्फोट के पीछे का मकसद पता चल जाए।
ये BBC है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अप्रैल 1965 में कच्छ के रेगिस्तान में हुई भारत पाकिस्तान झड़पों ने दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध की नींव रखी थी। भारत ने इस हमले का कड़ा प्रतिरोध नहीं किया था जिसकी वजह से पाकिस्तान को आभास मिला कि वो भारत को युद्ध में हरा सकता है। इस संघर्ष के दौरान ही दोनों देशों के वायुसेना अध्यक्षों ने तय किया था कि इसमें वायुसेना को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सुनिए 1965 युद्ध श्रृंखला की दूसरी कड़ी। कच्छ के जनजातीय लोगों का ये संगीत भले ही आपको अपनी ओर खींचने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन ये इलाका कम से कम 1965 में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था जहां आदमजात के नाम पर कुछ चरवाहे कभी कभार अपने गधों को चराने जाया करते थे या भूले भटके पुलिस वालों का दल वहां गश्त लगाया करता था। बहुत कम लोगों को पता है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की नींव कच्छ के इस लगभग अनजान और बियाबान इलाके में हुई सीमित मुठभेड़ से रखी गई थी। सामरिक रूप से यहाँ पाकिस्तान बहुत फायदे में था क्योंकि इस इलाके में 26 मील की दूरी पर उनका रेलवे स्टेशन बदीन था जहाँ से कराची की रेल से दूरी मात्र 113 मील थी। फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद के लेखक फारूक बाजवा कहते हैं,
पाकिस्तान के लिए कच्छ में लड़ना ज्यादा आसान था क्योंकि पाकिस्तान से कराची से इतना दूर नहीं है, दूसरे शहरों से इतना दूर नहीं है। भारत के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो पूरा गुजरात का रेगिस्तान क्रॉस करना था, वहाँ पे पहुँचना था राजस्थान के दूसरी साइड पे, इंडिया की फौज टैंक्स पहुँचने, असला पहुँचना, फौजियों को बिठाना, उनको खाना पीना देना, पानी देना, भारत के लिए मुश्किल था, पाकिस्तान के लिए आसान था। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि अगर कच्छ में थोड़ी सी ज्यादा लंबी जंग होती तो पाकिस्तान को जरूर फायदा होता, लेकिन वो रेगिस्तान थी तो वो ले भी लेते तो क्या फर्क पड़ता।
झगड़े की शुरुआत तब हुई जब भारतीय सुरक्षा बलों को पता चला कि पाकिस्तान ने डींग और सोराई को जोड़ने के लिए 18 मील लंबी एक कच्ची सड़क बना ली। मार्च आते आते भारत ने भी गंजरकोट के करीब आधा किलोमीटर दक्षिण में सरदार चौकी बना ली। पाकिस्तान के कमांडर मेजर जनरल टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अख्तर को आदेश दिया कि भारत की सरदार चौकी को तहस नहस कर दिया जाए। 9 अप्रैल की सुबह 2 बजे पाकिस्तानी हमला शुरू हुआ। शालीमार चौकी पर तैनात स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवान मशीन गन और मोर्टर फायर के कवर में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाए। हालांकि सरदार चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनका कड़ा प्रतिरोध किया। भारत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेजर जनरल डून को मुंबई से कच्छ बुला लिया। पाकिस्तान ने भी इस बीच पूरी 8 इन्फेंट्री डिवीजन को कराची से हैदराबाद सिंध पहुंचा दिया। इस बीच दिलचस्प बात यह हुई कि पाकिस्तानी वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल असगर खान ने भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल अर्जन सिंह को फोन पर पेशकश की कि दोनों देशों की वायुसेना इस लड़ाई से अपने आप को अलग रखें। हालांकि असगर खान ने अपनी आत्मकथा माई वर्जन में इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन बाद में कयास लगाए गए कि शायद इसी कारण युद्ध शुरू होने से 10 दिन पहले अयूब खान ने उन्हें उनके पद से हटाकर एयर मार्शल नूर खान को पाकिस्तानी वायुसेना का नया प्रमुख बना दिया। अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान ने बीबीसी को बताया।
ये तो एडमिट किया हुआ है, खुद भी कहते हैं कि मैंने हाँ किया है ये, और अर्जुन सिंह को मैसेज उन्होंने दिया था बगैर डिफेंस मिनिस्टर को या सदर को बताए हुए या आर्मी चीफ को बताए हुए कि हम नहीं कर रहे। और बाद में जब ये चीज मैंने लिखी और बाद में जनरल असलम बेग ने भी ये चीज उठाई, आपस में इनके ये पीछे झगड़े हुए थे कुछ साल पहले, तो मेरे से जनरल असलम बेग ने भी पूछा और ये बुक्स में भी लिखा हुआ है जहाँ असेस किया है इंडिया पाकिस्तान की एयर फोर्सेस को कि ये चीज हुई है। और एयर मार्शल असगर खान ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी रान ऑफ कच जो है हमारे एयर बेसिस से दूर है और हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं कोई ज्यादा वक्त के लिए रान ऑफ कच के ऊपर अपने जहाज उड़े अगर डॉग फाइट्स होती हैं या ग्राउंड एक्शन होता है, तो इसलिए मैं चाहता था कि एयर फोर्सेस जो है ना इस्तेमाल हो। लेकिन अगर आप देखें फौजी लिहाज से या एयरफोर्स के लिहाज से, ऐसा एक्शन जब एक जंग जारी है तो उसका एयर चीफ या कोई भी चीफ उस वक्त के दुश्मन चीफ के साथ करता है तो वो बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है, उसका एक्शन भी सीवियर हो।
24 अप्रैल को ब्रिगेडियर इफ्तिकार जुंजुआ के नेतृत्व में, जो बाद में पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष बने, पाकिस्तानी सैनिकों ने सेराबेत पर कब्जा कर लिया। अगले दो दिनों में भारतीय सैनिकों को बियरबेत की चौकी भी खाली करनी पड़ी। सवाल उठता है कि भारत ने पाकिस्तान के अतिक्रमण का समुचित जवाब क्यों नहीं दिया। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर कहते हैं,
उस वक्त शास्त्री जी के साथ मैं काम करता था तो मैंने सवाल उनसे पूछा था, तो कच्छ में आपने काफी कम्प्रोमाइज किया, कहते नहीं हम चाहते थे उनको बताना कि भाई मैसेज ऑफ पीस है, आराम से बात करें, और कुछ कंसेशन भी हमने दे दिए थे इसी बात पे, लेकिन उन्होंने इसका मतलब गलत समझा, वो समझा कि हमारी कमजोरी है।
पूर्व जनरल वीएन शर्मा का मानना है कि कच्छ पर पाकिस्तान ने भारत का ध्यान बटाने के लिए हमला किया था, उसका असली निशाना तो कश्मीर था।
भुज का जो हमला पाकिस्तान ने किया वो हमारी समझ में एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स था, क्योंकि सर्किक वगैरह का तो प्रॉब्लम है जो बॉर्डर है भुज का, लेकिन वहाँ हमला करना, हिंदुस्तान को बिल्कुल नहीं पता था कोई हमला होने वाला, हिंदुस्तान की कोई तैयारी नहीं थी, तो पाकिस्तान का जो हमला हुआ हम लोगों का काफ़ी सरप्राइज हो गया। पाकिस्तान का आइडिया था कि अगर हिंदुस्तान की नज़र भुज की तरफ लाई जाए फिर हम छम झौड़ियाँ और कश्मीर का बंदोबस्त कर पाए, क्योंकि उनकी फौजें दक्षिण की तरफ चले जाएंगी।
कुछ भी हो, पाकिस्तान ने सीमित झड़प से ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि भारतीय सेनाओं में कितना दम है। इस लड़ाई में पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ा, लेकिन इसकी वजह से उसे गलतफहमी भी हो गई कि कश्मीर की लड़ाई उनके लिए केक वॉक साबित होगी। पाकिस्तान और अमेरिका में राजदूत रहे शंकर बाजपेयी कहते हैं,
रन ऑफ कच्छ के बाद खास तौर से हम लोग कुछ तैयार होने लगे थे कि भाई देखो कुछ होगा कि नहीं, बल्कि अब पाकिस्तानी एडमिट भी करते हैं कि रन ऑफ कच्छ एक किस्म की उनके लिए ड्रॉबैक था, क्योंकि उसकी वजह से हमारी आर्मी फ्रंट लाइन पे पहुंच गई थी, क्योंकि हम लोग तैयार थे, अगर जो रन ऑफ कच्छ पे समझौता नहीं होता तो उसी मौके पे शायद हमको कुछ करना पड़े, और फिर हमने विथड्रॉ नहीं किया था वो तो जब अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने अपने इन्फिल्ट्रेटर्स शुरू किए कश्मीर में भेजने को, तो फॉर्चुनेटली हमारी फौज फ्रंट लाइन पोजिशन में थी, तो जवाब देने की तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं की जरूरत थी, ये एक गलती पाकिस्तान ने नहीं सोची थी।
तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं कल सुबह विश्व भारती कार्यक्रम में। और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है राखी के साथ।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले बात यूएस ओपन की। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के दूसरे दौर के मुकाबले आज खेले जाएंगे। कल पहले दौर की चुनौती को पार करने वाले खिलाड़ियों में स्कॉटिश खिलाड़ी एंडी मारे, स्विस खिलाड़ी रॉजर फेडरर, स्टैन वावरिंका और चेक रिपब्लिक के थॉमस बर्डिच रहे। 2012 के यूएस ओपन विजेता मरे ने विवादित खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को 7-5, 6-3, 4-6, 6-1 से सीधे सेटों से हराकर बाहर किया।
Yeah, like I said, I expected a very, very tough match, but it was hard for me to kind of go out there and be.
मैंने काफी कड़े संघर्ष की उम्मीद की थी। किर्गियोस के खिलाफ मुकाबला वैसा ही रहा। वो दमदार खिलाड़ी हैं। उनके शॉट्स अप्रत्याशित होते हैं। आप नहीं जान सकते हर पॉइंट पर क्या होगा। मैंने कई बार खुद को डिफेंड करते हुए पाया।
मरे का दूसरे दौर में मुकाबला फ्रांस के एड्रियन मनारेनो से होगा। वहीं फेडरर ने विश्व नंबर 16 अर्जेंटीना के लियोनार्डो मेयर को 6-1, 6-2, 6-2 से आसानी से मार दी। दूसरे दौर में फेडरर बेल्जियम के स्टीव डार्सिक से भिड़ेंगे। वावरिंका को दूसरे दौर में पहुंचने के लिए स्पेन के एल्बर्ट रामोस से चुनौती मिली, जिसे उन्होंने 7-5, 6-4, 7-6 से हराया। थॉमस बर्डिच को भी पहले दौर में 113वीं वरीयता प्राप्त जॉन फ्रिटेंगलो को हराने में महज 1 घंटे 53 मिनट का समय लगा। वहीं महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त पेट्रा क्विटोवा आसानी से दूसरे दौर में पहुंच गई। पांचवी वरीयता प्राप्त क्विटोवा ने जर्मनी की क्वालिफायर लॉरा सिमोन को 6-1, 6-1 से हराया।
I was quite happy that I play on Tuesday for sure. It's helping with one more day off for sure. And
मैं अपने खेल से खुश हूँ। मुझे अगले मैच से पहले एक दिन का ब्रेक भी मिल रहा है। तैयारी अच्छी रही। मैं आज की अपने प्रदर्शन से भी बहुत खुश हूँ। मैं काफी वक्त से अपने मुकाबले का इंतजार कर रही थी। एंडी मरे और निक क्रिगियोस के मुकाबले की वजह से इंतजार थोड़ा लंबा हो गया।
दो बार की विंबलडन चैंपियन क्विटोवा यूएस ओपन में कभी भी सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंची हैं। और अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में किए अच्छे प्रदर्शन का फायदा भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग में हुआ है। कोलंबो में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में 8 विकेट लेने वाले ईशांत शर्मा और इसी मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा टॉप 20 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 27 साल के पुजारा कोलंबो में 145 रन बनाकर पारी के अंत तक नाबाद रहे थे। ये पहला मौका है जब उन्हें टेस्ट के टॉप 20 बल्लेबाजों में जगह मिली है। पुजारा को 4 पायदान का फायदा हुआ। टॉप 20 बल्लेबाजों की लिस्ट में वो 11वें नंबर के खिलाड़ी विराट कोहली के बाद दूसरे ही भारतीय हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
तो राखी जिक्र कर रही थी अमरीकी ओपन टेनिस और भारत श्रीलंका टेस्ट श्रृंखला का। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत में कई मजदूर संगठनों की बुलाई एक दिन की हड़ताल का देश के कई हिस्सों में असर दिखाई पड़ा है। केरल में आम जनजीवन पर बहुत असर हुआ। पश्चिम बंगाल में इसका कुछ असर दिखाई पड़ा। दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों की यूनियन ने हड़ताल का समर्थन किया। कई बैंकों की यूनियन भी हड़ताल में शामिल हुई हैं, लेकिन इनमें भारतीय स्टेट बैंक की यूनियन शामिल नहीं है। हड़ताली संगठनों ने 12 मांगों की सूची सरकार को दी है। इन मांगों में न्यूनतम मजदूरी ₹15,000 करना भी शामिल है। दिल्ली में सीबीआई अदालत ने साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े स्ट्रीट लाइट घोटाले में 5 लोगों को सजा सुनाई है। इनमें दिल्ली नगर निगम के 4 अधिकारी भी हैं। इन सभी को 4-4 साल के कैद की सजा मिली है। इसके अलावा एक निजी कंपनी स्वेका पावरटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक टीपी सिंह को भी 6 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा ये पहला मामला है जिसमें अदालत ने सजा सुनाई है। थाईलैंड की पुलिस का कहना है कि उन्होंने पिछले महीने बैंकॉक में हुए बम धमाके की जांच में अहम प्रगति की है। उनका कहना है कि एक संदिग्ध के उंगलियों के निशान मिला लिए गए हैं। ये एक विदेशी नागरिक है जिसे कंबोडिया की सीमा पर सप्ताहांत में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से बम बनाने का सामान भी मिला है। इस बम धमाके में 20 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रिया में पुलिस ने एक वैन से 24 अफगान प्रवासियों को मुक्त कराया है। वैन में हवा जाने की जगह नहीं थी और इन लोगों के दम घुटने से जान जा सकती थी। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि वैन की खिड़कियों को सील कर दिया गया था और दरवाजों को बंद कर उनकी वेल्डिंग कर दी गई थी। पीछे के दरवाजे भी पूरी तरह से लॉक थे। वैन चलाने वाला रोमानियाई ड्राइवर भाग गया था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा में पूरी रात हुई भारी गोलीबारी में कम 2 लोगों की मौत हो गई है। इस साल के शुरुआत में वर्तमान राष्ट्रपति के 3री बार चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद से वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीती रात की हिंसा इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा उग्र रही है। सुरक्षा बलों ने कुछ इलाकों को सील कर दिया है। विरोधियों के गढ़ मुसागा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसका जवाब उन्होंने गोलियों से दिया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी हैं तो आइए bbchindi.com पर। सभी साथियों के साथ रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।